તારીખ 20/5/1996 શ્રી સમયસર ગાથા 265 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 248.
કુતુહલ વૃત્તિ ઓર પરલક્ષીપના જોર સે હટાના હૈ પરંતુ એ બાર બાર આ જાતા હૈ તો જોર સે હટાને કે લિયે ક્યા કરના કુતુહલ વૃત્તિ હૈ વો પર રુચિ હૈ પર રુચિ કા નુકસાન બડા હૈ વો આત્મરુચિ કો ઉત્પન્ન હોને નહીં દેતી ઓર કુતુહલ પર રુચિ હૈ જ્ઞાન કા વિવેક ખોના પડતા હૈ જ્ઞાન મેં વિવેક ચલા જાતા હૈ વિવેક ચલા જાતા હૈ મેને હિત અહિત કે વિષય મેં વિચાર શક્તિ કમજોર હો જાતી હૈ એસા નુકસાન સમજ કરકે દેખ કરકે અપને આત્મકલ્યાણ કી ભાવના કો બઢાના તો કુતુહલ વૃત્તિ મિટ કરકે સિર્ફ આત્મકલ્યાણ રૂપ સ્વલક્ષી પરિણામ હોંગે કુતુહલ વૃત્તિ વો ભી પરલક્ષપણા કે કારણ સે હોતી હૈ કુતુહલ વૃત્તિમાં હોય કે હમ હમારે આત્મકલ્યાણ કો ગૌણ કરકે જો વાત હમારે પ્રયોજન કી નહીં હૈ ઉનકો ભી કોણ આયા કોણ નહીં આયા દૂસરો કા પ્રવૃત્તિ કોણ દેખ લેતે હૈ જૈસે સંસાર મેં પડોસી ક્યા કરતા હૈ ઉસકે યહાં ક્યા ખાના બના ક્યા ચીજ આઈ ઉસકો કે ક્યા હુઆ ક્યા નહીં હુઆ ક્યા જરૂરત હૈ વહાં સે લેકર કે દુનિયા ભર કા સમાચાર કો હમકો કુતુહલ વૃત્તિ મેં ચાહિયે જો હમારે પ્રયોજન કા વિષય નહીં હૈ ફિર ભી હમ આત્મકલ્યાણ કો ગૌણ કર દેતે હૈ તો વો પરલક્ષીપણા હૈ ઉસે નુકસાન બહોત હોતા હૈ હા ઉનકો તો વો ભી બાત બાજુ મેં કોણ બેઠે હૈ ઉનકો પતા નહીં હોતા વો ગુરુદેવ કો દેખતે રહેતે થે ટકટકી લગા કરકે ગુરુદેવ કો દેખતે થે લાભ નુકસાન કા વિવેક વિચાર કરકે પરલક્ષીપણા કો ઓર કુતુહલ વૃત્તિ કો હટાના ચાહિયે પ્રથમ સમથી સત્પુરુષ કી પહેચાન इससे पहले की मुमुक्षु की भूमिका के भाव तथा पहचान के बाद में भावों को विस्तार विस्तार बताइए। सांसारिक भाव और मुमुक्षुता के भाव दोनों प्रकार के भाव तो सत्पुरुष की पहचान के पहले तो कोई ठिकाना नहीं है जीव के परिणाम का तो कोई ठिकाना नहीं है। अब मुमुक्षु की भूमिका जो है तो उसके पहले यथार्थ हो गए तो उनको पूर्णता का लक्ष्य होता है। पूर्णता का लक्ष्य नहीं होता है तो फिर परिणाम का कोई ठिकाना नहीं है। कभी शुभ भाव करता है, कभी अशुभ भाव करता है, कभी कोई साधन को ग्रहण करता है धर्म का, कभी कोई साधन को ग्रहण करता है, कभी कोई साधन को छोड़ता है। लेकिन यथार्थ भूमिका आवे तो वेदना पूर्वक परिभ्रमण की वेदना पूर्वक पूर्णता का लक्ष्य हो जाए तो ये परिणाम तो ठीक है। बाकी संसार के परिणाम तो उदय अनुसार होते हैं और पहचान के बाद जो भाव होते हैं उसमें तो बहुत फर्क पड़ता है। जब सत्पुरुष की पहचान हो जाती है तो सभी प्रकार के कदाग्रह, पूर्वाग्रह, मताग्रह, आग्रह सब बंद हो जाते हैं। बहुत मध्यस्थता आती है और अनंतानुबंधी के जो परिणाम प्रकृति के हैं वो भी फिक्के पड़ते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उतना फर्क तो अवश्य पड़ता है। और सत्पुरुष की पहचान के बाद जीव अपना आत्मकल्याण के विषय में जो भी सत्पुरुष का बोध मिलता है उसको अमलीकरण में जाने के लिए संवेग से वेग पूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है। और इनके जो सांसारिक भाव है वो एकदम कमजोर हो जाते हैं, यानी संसार बल कम हो जाता है, संसार के कार्यों में उसको रस नहीं आता, उदय प्रसंगों में रस नहीं आता, ऐसे परिणाम हो जाते हैं। इस विषय पर तो एक आर्टिकल अभी चल रहा है, वो जून से आत्म जागृति में चालू हो जाएगा आने का, उसमें तो बहुत विस्तार से सब बातें लिया है। प्रथम संकित के बाद अपकर्षित संचित कर्म ज्यादा उदय में आते हैं या पहले, वो तो जैसे जैसे जीव छूटने का प्रयास करता है, पहले भी अगर पूर्णता के लक्ष्य में छूटने का प्रयास करता है तो पहले भी आता है, बाद में भी छूटने का प्रयास चलता है तो बाद में आता है। उनका छूटने का प्रयास चलता है, मुक्त होने का प्रयास चलता है, मुक्ति के लिए प्रयास चलता है, तब संचित कर्म की स्थिति जो है वो अपकर्षित होकर के उदय में आने लगते हैं, दोनों अवस्था में होते हैं। अब 265 गाथा का हीलिंग है। पुनः बाह्य वस्तु भी दूसरा भी बंधका, बाह्य वस्तु यह भी यह दूसरा भी बंधका कारण होगा, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। अध्यवसान यह बंधका एक कारण, और जो जिस वस्तु के आश्रय से अध्यवसान होता है ऐसी बाह्य वस्तु वो बंध का दूसरा कारण होगा, ऐसी भी शंका करने योग्य नहीं है। अध्यवसान ही एक बंध का कारण है, बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, ऐसे अर्थ की गाथा कहेंगे। क्या कहते हैं कि अध्यवसान बंध का कारण बताया और साथ साथ बताया कि बाह्य वस्तु बिना अध्यवसान नहीं होता, अध्यवसान बाह्य पदार्थ का आश्रय कर लेता है, तो बंध का कारण में दोनों मिलके बंद होता है या एक ही कारण से बंद होता है, कि एक ही कारण से होता है, बाह्य पदार्थ बंध का कारण नहीं है, इसलिए निमित्त पर आरोप देना नहीं, अपना अपराध के लिए निमित्त पर आरोप लगाना नहीं कि आपके कारण से मेरे अध्यवसान होते हैं, ये बात बिल्कुल विपरीत है। वो गाथा में कहेंगे, वत्थुम पड्डूचम पड्डूचजम पुनः अध्यवसानं तु होदि जीवाणं नय वत्थुदो तु बंधो अध्यवसानेन बंधो थे। अध्यवसान होता है यह वस्तु के अवलंबन लेकर के होता है, किसी न किसी पदार्थ का अवलंबन लेकर के होता है तो भी, ऐसा होता है तो भी वस्तु से बंद नहीं है, अध्यवसान से ही बंद होता है। वस्तु से बंद का, वस्तु बंद का कारण क्यों ये बात किया कि बाह्य वस्तु के त्याग का एक प्रकरण है, बहुत बड़ा प्रकरण है ये धर्म के क्षेत्र में त्याग का। तो जो लोग बद्ध का स्वरूप नहीं समझते तत्व दृष्टि से कि बद्ध का तात्विक स्वरूप क्या होता है, ये बात जो लोग नहीं समझते तो वस्तु के कारण से बंद होता है ऐसा समझ करके, मान करके वस्तु का त्याग करता है, वो भूल करते हैं। उस प्रकार से बंद का अभाव होगा नहीं। तो दृष्टांत दिया था, एकासन किया या उपवास किया तो चलो हमको बंद नहीं होगा, आज आहार नहीं लेंगे तो बंद नहीं होगा, एक ही वक्त खाएंगे दो तीन दफे नहीं खाएंगे तो उस प्रकार का बंद नहीं होगा, वो बात नहीं है। तुम्हारा अध्यवसान एकासन में क्या हुआ कि तीन टाइम खाने का रहा तो बंद तो पूरा हो गया, एक आसन पर बैठ करके तीनों टाइम का खा लिया तो बंद तो हो गया अध्यवसान का। तो तीन टाइम खाया नहीं खाया से कोई मतलब नहीं है। टीका, अध्यवसान ही बंद का कारण है, जो वजन दिया है अध्यवसानम एव बंध हेतु न तो बाह्य वस्तु, बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, अध्यवसान ही बंध का कारण है परंतु बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है। क्योंकि बंध के कारण जो, बंध का कारण जो अध्यवसान है उसका कारणपणा से ही बाह्य वस्तु का चरितार्थपणा है, अर्थात बंध का कारण जो अध्यवसान है उसका कारण होने में ही बाह्य वस्तु का कार्य क्षेत्र समाप्त हो जाता है, यह कोई बंध का कारण होते ही नहीं है। पदार्थ कोई बंध का कारण नहीं है, पदार्थ का चरितार्थपणा मैंने कार्य क्षेत्र कहाँ तक है कि जीव अवलंबन लेता है वहाँ तक, बाकी वस्तु अपने में पड़ी है, जगत का पदार्थ जगत में पड़ा है, जीव अध्यवसान करता है तो आरोप आता है उस पर, अध्यवसान नहीं करता है तो कुछ लेना देना नहीं है। उसकी चर्चा करेंगे अमृतचंद्र आचार्य देव, इस गाथा की टीका में इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ प्रश्न होता है कि जो बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है तो यानी बाह्य वस्तु का प्रसंग मत करो, त्याग कर दो, ऐसा बाह्य वस्तु का निषेध क्यों करने में आता है, धर्म के क्षेत्र में त्याग का उपदेश क्यों है, प्रश्न सीधा वो उठाया है। उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, हाँ व्यवसाय को छोड़ दो, परिग्रह को छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, छोड़ दो की बात क्या है, आहार को छोड़ दो, कपड़े को त्याग कर दो, क्या बात है, क्या प्रश्न किया कि अगर वो वस्तु बंध का कारण नहीं है तो उसको छोड़ने का उपदेश क्यों फिर, सीधी बात है, वस्तु वस्तु में रहने दो भले ही हो, उसका त्याग का उपदेश मत दो, अध्यवसान सिर्फ सिर्फ अध्यवसान को छुड़ाओ, वस्तु को तो मत छुड़ाओ, आपके उपदेश में तो वस्तु को छोड़ने का भी उपदेश आता है, क्या बात है, स्पष्टीकरण दीजिए। उसका समाधान, कि अध्यवसान के प्रतिषेध के लिए बाह्य वस्तु का प्रतिषेध करने में आया है। तो 572 में बात चल गई है, मूल बात तो आगम में पड़ी है, फिर ज्ञानी अपनी शैली से बात करते हैं कि बाह्य वस्तु का त्याग करने के पीछे अध्यवसान का त्याग करने का प्रयोजन रहा है। अकेली बाह्य वस्तु का त्याग करने का प्रयोजन नहीं है, अध्यवसान का त्याग होने के लिए वो बात रही गई है। अध्यवसान को बाह्य वस्तु आश्रयभूत है, अध्यवसान बाह्य वस्तु का आश्रय अवलंबन देकर के पैदा होता है। बाह्य वस्तु का आश्रय किए बिना अध्यवसान अपना स्वरूप को प्राप्त नहीं होता, यानी उत्पन्न नहीं होता। जो बाह्य वस्तु के आश्रय किए बिना भी अध्यवसान उत्पन्न हो जाए तो उत्पन्न होता हो तो जैसे आश्रयभूत ऐसे वीर जननी के पुत्र के सद्भाव में ऐसा अध्यवसान उत्पन्न होता है कि मैं ये वीर जननी के पुत्र को तो मारता हूँ, घात करता हूँ, वैसे ही आश्रयभूत ऐसे वंध्या पुत्र के असद्भाव में भी किसी को ऐसा अध्यवसान उत्पन्न होना चाहिए कि मैं वंध्या पुत्र को भी मारता हूँ, परंतु ऐसा अध्यवसान तो किसी को उत्पन्न होता नहीं। और वस्तु का अध्यवसान नहीं होता, मतलब वस्तु का अध्यवसान होता है, उतनी बात तो बराबर है कि नहीं है कि जो चीज ही नहीं है उसके लिए अध्यवसान क्या, जो चीज है उसके लिए अध्यवसान हो तो हो। इसलिए ऐसा नियम है कि बाह्य वस्तु रूप आश्रय बिना अध्यवसान होता नहीं, अध्यवसान होता है तो निमित्त भूत बाह्य पदार्थ भी होता ही है। और इसलिए ही अध्यवसान का आश्रयभूत ऐसी जो बाह्य वस्तु उसका अत्यंत प्रतिषेध है, उसका निषेध है, प्रतिषेध माने निषेध है, क्योंकि कारण का प्रतिषेध से कार्य का भी प्रतिषेध होता है। कारण का प्रतिषेध से कार्य का प्रतिषेध का प्रयोजन है उसमें, अकेला बाह्य वस्तु का त्याग का प्रयोजन कोई होता नहीं है। ये बात अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए कि अकेली बाह्य वस्तु के त्याग का कोई प्रयोजन नहीं है, उस वस्तु आश्रित हमारा अध्यवसान होता है, उसका त्याग के लिए उसका त्याग कराया गया है, उतनी सी बात है। उसमें क्या कहने का है, बाह्य वस्तु की उपस्थित होना वो जरूरी नहीं है, कल्पना में भी बाह्य वस्तु को ले लेते हैं लेकिन वस्तु तो है कि नहीं है। एक और तर्क लगा दे, आकाश के फूल का तो पेड़ पौधों के फूल को लेने का तोड़ने का अध्यवसान होता है, लेकिन जब आकाश में फूल नहीं है तो उसको तोड़ने का विकल्प कहाँ से आएगा। जो बगीचा में बाग में जो पौधे पर फूल लगता है उसको तोड़ने का विकल्प आता है, आकाश के में तो फूल नहीं है उसको तोड़ने का विकल्प नहीं आता है। जब आकाश के फूल होते नहीं है तो फिर वो बात खड़ी कैसे हुई कि आकाश भी एक वस्तु है और फूल भी एक वस्तु है, लेकिन आकाश के फूल नहीं होते, आकाश नहीं है और फूल भी नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों है लेकिन आकाश के फूल नहीं होते। वैसे सामने कोई चीज होती है उसका जीव आलंबन लेता है, और सामने नहीं होती है तो कल्पना में भी आलंबन लेता है। आलंबन दोनों प्रकार का करता है। अब अकेला बाह्य वस्तु का त्याग करेगा और कल्पना में आलंबन लेगा तो उसको कौन रोक सकता है? तो अकेली बाह्य वस्तु का त्याग का तो कोई प्रयोजन नहीं रहा। तो मूल बात वो है कि अध्यवसान का त्याग करने का है, अभाव करने का। त्याग माने अभाव करने का है। अगर जीव पुरुषार्थ से अध्यवसान का अभाव करता है तो फिर बाह्य वस्तु का तो कोई वैसे ही प्रयोजन नहीं है, जरूरत भी नहीं है, तो उसको छोड़ देता है, ग्रहण करने का विकल्प टूट जाता है। और स्पष्ट करें तो एक बात और भी है कि जैसे पंचम गुण स्थान में देश त्याग की पद्धति है, अनादि मोक्ष मार्ग की परंपरा में जो बाह्य व्यवहार है उसमें एक पंचम गुण स्थान ऐसा गुण स्थान है कि उसमें 11 सीढ़ी है, पगथिया 11 पगथिया है, एक एक सीढ़ी पर चढ़ता है, क्रम से आगे बढ़ता है कोई साधक धर्मात्मा। तो उसमें क्या होता है कि उसका स्वरूप स्थिरता बढ़ती जाती है। अस्थि से देखे जाए तो उनकी मित्रागता और स्वरूप में स्थिरता होने की जो ताकत है और योग्यता है वो बढ़ती जाती है, और उस जैसे जैसे स्वरूप में अधिक अधिक स्थिर रहता है वैसे वैसे उनके बुद्धिपूर्वक का जो विकल्प है वो छूट जाता है। तो बुद्धिपूर्वक का विकल्प छूट जाता है तो बुद्धिपूर्वक जिस विकल्प से वो वस्तु को ग्रहण करता था वो विकल्प तो रहा नहीं। तो पहले विकल्प से ग्रहण करता था, अब वो पचकाण ले लेता है, अपनी स्थिरता आते ही पचकाण ले लेता है कि मुझे इस चीज का ग्रहण करना वर्ज्य है, मैं इस चीज को ग्रहण नहीं करूंगा। जैसे रात्रि भोजन त्याग आता है कि नहीं आता है? गुण व्रत अणुव्रत में, हाँ, अणुव्रत गुण व्रत और शिक्षा व्रत, तीन प्रकार के व्रत है ना, इसमें आता है। तो उनकी स्वरूप स्थिरता बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि रात्रि भोजन करने का विकल्प भी उसको उत्पन्न नहीं होगा। विकल्प आएगा और दबाएगा वो बात नहीं है, विकल्प का अभाव हो जाएगा। तो उस प्रकार से उनको जो विकल्प नहीं, तो फिर चीज क्यों, चीज की क्या जरूरत है? इस चीज की जरूरत नहीं तो उसका पचकान ले लेता है। उस तरह से मूल में भाव को पकड़ना चाहिए कि विकल्प क्या है, राग क्या है, अध्यवसान क्या है। उसका अभाव करने से फिर वस्तु का त्याग सहज कर सकते हैं। इसलिए त्याग का उपदेश दे दिया कि उसको ग्रहण करने का तो कोई मतलब नहीं रहा, जब भाव ही नहीं आया तो वस्तु की क्या जरूरत है। हाँ, गुरुदेव को स्वप्न में एक देव आया था, बड़ा इतना हीरा लेकर के, इतना बड़ा हीरा जगत में तो मिलना मुश्किल है आजकल, लेकिन कोई देव आया तो गुरुदेव ने क्या कहा, स्वप्न में भी क्या कहा कि हमको क्या जरूरत है, तुम वापस ले जाओ, जिसको जरूरत नहीं है उसको ग्रहण करने का विकल्प नहीं आएगा। तो उसका इसका अध्यवसान कहां से होगा कि मेरे पास ऐसे हीरे हो तो अच्छा है, वो हीरे का परिग्रह का विकल्प उसको नहीं आएगा, क्योंकि उनको उसका अध्यवसान नहीं है। उस तरह से ही वृत्ति आएगी ना, इसलिए वस्तु का त्याग दिखाया है। देवस्थान के त्याग का हेतु है वस्तु के त्याग के उपदेश में, उतनी सी बात है। अभिप्राय के कारण है, अभिप्राय को बदला नहीं। मुमुक्षु की भूमिका में जो अभिप्राय का पलटा होता है वो नहीं किया, और त्याग तो कर दिया, पर मंद कषाई बहुत है तो उनको इच्छा नहीं होती, परंतु अभिप्राय तो पड़ा है तो अभिप्राय पूर्वक का आश्रय भी उनको चालू है, भले ही परिणाम मत करे तो भी उसका आश्रय चालू है। कोई संसारिक प्रवृत्ति नहीं है, सर्वसंग परित्याग करके जंगल में चला गया, चला जाता है। गुरुदेव कहते थे कि द्रविलिंगी बिल्कुल निवृत्त हुआ ही नहीं, सम्यक दृष्टि को कोई प्रवृत्ति है ही नहीं, छह खंड का राजकाज होने पर भी और द्रविलिंगी को निवृत्ति बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा कहते थे। वो वस्तु का त्याग किया है, देवस्थान का त्याग नहीं किया, अभिप्राय में पड़ा है देवस्थान, उदय भाव में नहीं दिखता है लेकिन अभिप्राय में सब पड़ा है। कैसे, इसका सबूत क्या, कि वो जो शुभ भाव की क्रिया करता है उसमें वही उसका अध्यवसान है, वही उसका अध्यवसान है। जो शुभ भाव की उदय की क्रिया वो करता है, क्या करता है, वो उदय भाव है वो उसका, और उदय भाव में उनका पूरा अवलंबन लेता है, और जो भी उनके बाह्य धर्म साधन है अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य वगैरह का, वही उसका जो अवलंबन का वस्तु हो जाता है। उसके अवलंबन की वस्तु कौन, ये संसार के पदार्थ नहीं है, लेकिन जो व्यवहार क्रिया के साधन है वो तो इसके अवलंबन के वस्तु होते ही है। तो उसको उस प्रकार का अध्यवसान है। एक राग के कण को वो ठीक समझता है अपने अभिप्राय में। ज्ञानी कहते हैं कि सारे संसार का राग इसके अभिप्राय में पड़ा है। बात आगे यहां से मूल में तात्विक उपदेश वो है कि अध्यवसान को छोड़ो, पर वस्तु सहज छूटने का अवसर आ जाएगा, और देर सवेर छूटे तो भी इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्वरूप स्थिरता आएगी तब तो छूटेगी ही छूटेगी। इसमें क्या है कि जो प्रवृत्ति होती है उदय भाव तो रहेगा, उदय भाव का आश्रयभूत कोई वस्तु तो रहेगी, हाँ वो अध्यवसान है, पर अभिप्राय में सारा संसार पड़ा है। अब जिसको जैसा उदय है वहां वैसे बाह्य वस्तु होगी ही होगी, जगत के पदार्थ तो जगत के पदार्थ में मौजूद है हर जगह। जीव जो भी अध्यवसान करेगा द्रविलिंगी, तो वो 28 मूल गुण पालन करने में जो भी अध्यवसान करेगा, जो जो बाह्य वस्तु का अवलंबन करेगा, मन की क्रिया, वचन की क्रिया, काय की क्रिया करेगा कि नहीं करेगा, पर वस्तु की अहिंसा, पर जीव की अहिंसा वगैरह, तो उसका अवलंबन का विषय हो गया कि नहीं हो गया, तो बिना बाह्य वस्तु का अवलंबन अध्यवसान हुआ, अध्यवसान में तो बाह्य वस्तु है ही, वो तो है ही, क्यों? कि आकाश के फूल को कोई छूटते नहीं है, कोई ना कोई चीज होती है कि नहीं होती है, बस उतनी सी बात है। रात्रि भोजन का विकल्प न आए तो उसका भी अध्यवसान होता है। वो तो क्या है कि जहाँ तक नहीं होता है मिथ्यात्व अवस्था, अनंतानुमंदी और प्रत्याख्यानवर्णी, प्रत्याख्यानवर्णी और संजलन चारों का ही होता है, कोई चीज बाकी। अध्यवसन मिथ्यात्व सहित का राग, मिथ्यात्व और अज्ञान सहित का राग को अध्यवसन कहते हैं। ऐसे दूसरे प्रकरण में दूसरा भी, हाँ 388 पेज में अर्थ किया है। जो परिणाम मिथ्या अभिप्राय सहित हो, देखो अभिप्राय दिया है वहां, जो परिणाम मिथ्या अभिप्राय सहित हो अथवा स्वपर का एकत्व के अभिप्राय सहित हो, फिर ले लेना कर्ता बुद्धि सहित हो, भोक्ता बुद्धि सहित हो, आधार बुद्धि सहित हो, सुख बुद्धि सहित हो, सब आ जाता है। वो सब बात चली थी, जब वो बात चला गाथा चली तब तो। अथवा वैभाविक हो, इस परिणाम के लिए अध्यवसाय शब्द का प्रयोग होता है। मिथ्या निश्चय, मिथ्या अभिप्राय, ऐसे अर्थ में भी यह शब्द का प्रयोग है, और कभी कभी वैभाविक परिणाम के लिए भी ऐसा शब्द प्रयोग है, दोनों प्रकरण में आता है। यहाँ तो मुख्यतया मिथ्या अभिप्राय सहित, अज्ञान मिथ्यात्व सहित जो अभिप्राय है, जो परिणाम है, उसको अध्यवसान कहने में आता है। हाँ ताले मिथ्या तो वही अध्यवसान है। अभी क्या है कि वो बात अभेद विवक्षा से कही है, भेद विवक्षा से इनके भेद प्रभेद भी समझाने में आता है, तब समझ में आता है कि क्या क्या होता है। जैसे अपने को प्रश्न उठा, द्रविलिंगी वाला प्रश्न उठा के नहीं उठा, उसमें कैसे अध्यवसान होते हैं, क्यों होते हैं, तो उनका जब भेद प्रभेद की चर्चा होती है तो विषय स्पष्ट समझ में आ जाता है। ऐसा नियम है कि बाह्य वस्तु रूप आश्रय के बिना अध्यवसान होता नहीं है, और इसलिए ही अध्यवसान के आश्रयभूत ऐसी जो बाह्य वस्तु, उसका अत्यंत प्रतिषेध है, क्योंकि कारण का प्रतिषेध से ही कार्य का प्रतिषेध होता है। वस्तु का अत्यंत निषेध करने में कहाँ जोर है? अध्यवसान का निषेध करने का उसमें जोर है। मूल बात ऐसी है, जो बात को, बात के आशय को नहीं पकड़ते, वो तो बाह्य वस्तु के त्याग को पकड़ लेते हैं और त्याग में चढ़ जाते हैं, उसका अध्यवसान भी मिटता नहीं और उसका त्याग सफल होता नहीं है। नहीं, वस्तु में वस्तु ही लेना है, वस्तु के पीछे वो आशय है ऐसा लेना है। हाँ, भाव भी है और बाहर में पदार्थ भी है उसका, स्वभाव का निमित्त भूत पदार्थ तो है ही उसका, जो भी क्रिया करते हैं, मन वचन काय आदि जो निमित्त है उसका आश्रय वो लेता है, जैसे शरीर से संयम पालन करता है द्रविलिंग, तो शरीर का आश्रय लेता है। और हमारे यहाँ भी संप्रदाय में जो जड़ क्रिया करते हैं वो क्या करते हैं कि क्रिया का कितना पकड़ करते हैं, तो उस वस्तु का आश्रय, क्रिया का आश्रय करता है, पर वस्तु का आश्रय करता है। ऐसा होना ही चाहिए, परिणाम कितने भी बिगड़ जाए लेकिन क्रिया होनी चाहिए, होता है कि नहीं होता है, तो वो प्रयोजन को नहीं समझ, त्याग के आशय को नहीं पकड़ा उन्होंने। तो त्याग के पीछे आशय क्या था, कि त्याग के पीछे आशय तो अध्यवसान छुड़ाने का था, वो तो छुड़ा नहीं और त्याग कर लिया, वो समझे नहीं, तो त्याग का उपदेश को ही नहीं समझे, वो बात है कि त्याग का उपदेश को वो नहीं समझे। कंदमूल आलू प्याज आदि खाने का नहीं हो तो भी घर में दूसरों के लिए बनाना पड़े तो दोष लगता है, कहाँ लगता है, उसमें भी दोष लगता है, क्योंकि घर वाले को राजी रखने की बात हो गई, अगर हम नहीं बना के दें तो नाराज हो जाएंगे, कि नाराज होवे तो हो, घर वाले को बोल देना चाहिए कि आपके कारण से मुझे दुर्गति में नहीं जाना है, आपको जाना है तो आप जाइए, मुझे क्यों ले जाते हो, बना लो आप, हमको नहीं बना के देंगे, खाना हो तो खाओ, मत खाना हो तो मत खाओ। हाँ, हमको धर्म भी करना है और परिवार वाले को राजी भी रखना है, दो बात चलने वाली नहीं है। परिवार राजी हो या नाराज हो, हम हमारे रास्ते पे चलेंगे, हम विचलित होंगे नहीं। रहने का हो या नहीं रहने का हो बोल देना कि आपको रहना हो तो मेरे साथ रहिए, नहीं रहना हो तो रास्ता निकाल दो हमारा, लेकिन हमको दुर्गति में जाना, कहाँ तक साथ में रहोगे, आयु पर्यंत साथ में भी कहाँ तक रहोगे, आयु पर्यंत, वैसे ही साथ में हमेशा तो रहने का है ही नहीं, तो थोड़ा देर सबर पहले हो जाए तो इसमें क्या तकलीफ है, लेकिन हमको रहना है तो इसका कोई रास्ता नहीं है, कि हमको तो आपके साथ रहना है भले ही हम दुर्गति में चले जाए, इसका कोई इलाज नहीं है। नहीं करना चाहिए, और आप दृढ़ रहेंगे तो सीधे हो जाएंगे, आप मजबूत रहेंगे तो सीधे हो जाएंगे, आप कमजोर होएंगे तो कमजोर को तो सब दबाते ही हैं, हमको ऐसे कमजोर होना नहीं है, ऐसी बात। फिर आप कहेंगे कि क्या आपके यहाँ घर में तकरार होने का उपदेश मिलता है ये भी चलता है, जब घर में तकरार होती है ना तो ऐसा धर्म है, आपको वहाँ ऐसा सिखाते हैं, ऐसा प्रश्न पूछते हैं, तो क्या है अपना राग द्वेष अपराध को तो देखेगा नहीं और आरोप लगाएगा सामने वाले पे, संसार की ऐसी उल्टी रुझीति है, लगाओ तो लगाओ लेकिन हम हमारा मार्ग से च्यूत होने वाले नहीं है, ऐसा होना चाहिए। हाँ, वो तो अध्यवसान को समझ लेना, इसके पीछे इसका अध्यवसान छोड़ाना है, देवसान नहीं छूटे तो रस रह जाएगा, अभिप्राय रह जाएगा, तो नहीं खाया तो भी असर तो चालू रह जाएगा।
वो
तो है, तो ज्ञानी थे ना, तो ज्ञानी के अनुसार परिणाम आएगा। परंतु अब देखो क्या और स्पष्टीकरण आता है, परंतु बाह्य वस्तु बंध का कारण का कारण है, कारण मैंने निमित्त, बंध का कारण का निमित्त है, कारण मैंने निमित्त लेना, मैंने बाह्य वस्तु बंध के कारण का अर्थात अध्यवस्थान का कारण है यानी निमित्त है, उसको अवलंबन लेता है तब निमित्त कहने में आता है। तो भी यह बाह्य वस्तु बंध का कारण
नहीं है,
नहीं है। दृष्टांत दे रहे हैं, क्योंकि क्रिया समिति में परिणमित हुआ मुनिंद्र के पग में पैर के द्वारा हिंसा होती है, ऐसा कोई तेजी से आ पड़ता है काल प्रेरित उड़ने वाला जीव उसकी माफक क्या हुआ कि मुनिराज तो इरिया समिति से चलते हैं, मैंने देख करके चलते हैं, कोई भी जीव जीवात हो उस पर अपना पैर रखने का उसका विकल्प नहीं है, फिर भी पैर रखने के गए और तेजी से कोई हवा से उड़ करके कोई जीव आकर के पैर के नीचे कुचल गए, तो उनका तो सावधानी बराबर थी, यत्ना से चलते थे, प्रयत्न से चलते थे, फिर भी वो तो कंट्रोल की चीज नहीं कि कोई उड़ करके आ जाए बीच में तो क्या करें, जैसे एक्सीडेंट होता है वैसे। बाह्य वस्तु को जो बंध का कारण है, यह बंध का कारण नहीं होती होने से बाह्य वस्तु को बंध का कारण पने मानने में अनेकांतिक हितवाभासपना है, तो शास्त्रीय परिभाषा दिया है, अवलंबन लेते हैं तो हेतु है बंध का कारण, अवलंबन लेते नहीं है तो वो बंध का कारण नहीं है, तो एकांत बात नहीं रही। जैसे मुनि के पैर के नीचे कोई जीव मर गया उसको उसका बंध होगा
नहीं,
हिंसा का बंध नहीं होगा, मुनि को हिंसा का बंध नहीं होगा, वरना तो पैर के नीचे कोई जीव आके मरता है तो बंध का कारण हिंसा का कारण होता ही है, लेकिन उसमें अनेकांतपना है, किसी जीव की हिंसा होने में जो हेतु है बंध का वो अनेकांतिक है, एकांत नहीं है, उसको अनेकांतिक हितवाभास कहने में आता है, तो बंध होता भी है और बंध नहीं भी होता है, मुनि को बंध नहीं भी होता है, और जो इधर उधर देख के चलता है प्रमाद से चलता है उसको बंध होता है, उसको ख्याल नहीं रखा कि नीचे कौन मरता है, मुनिराज वाहन का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, ये वाहन में तो बहुत से जीव मरने की सहज प्रक्रिया है, उसमें तो बचाने की कोई परिस्थिति है नहीं, पैर हो तो देख के रखे लेकिन गाड़ी को कैसे चलाएगा, वहां तो उसके नीचे पहिए के नीचे आ ही जाएंगे, और स्पीड से चलती है वो, चलने में तो धीरे धीरे देख के भी चले, इसलिए मुनियों को जो बाह्य व्यवहार है उसकी जो मर्यादा है इसका भी इसके पीछे भी एक कारण है कि उनके परिणाम ही ऐसे होते हैं कि देख के चलना देख के बैठना, देख के सोना, सब कुछ देख के करते हैं। ऐसे बैठ जाते नहीं, ऐसे सो जाते भी नहीं है। अनेकांतिक स्वभाषपणा है, यानी व्यभिचार आता है। व्यभिचार आता है मैंने दोष आ जाता है। अगर मान लिया जाए कि मुनि को भी हिंसा का दोष हुआ तो वो बात सही नहीं है। अच्छी बात है, रहे तो यत्न से मुमुक्षु भी रहे तो अच्छी बात है, इनके परिणाम अच्छे हैं। लेकिन मिथ्यात्व सहित के परिणाम तो देवस्थान में जाएंगे। तो मुमुक्षु यतना में अपना पुरुषार्थ लगाए या अध्यवसान को दूर करने में अपना पुरुषार्थ लगाए, वो विवेक करने का है। क्यों कि बाहर में यतना का पालन करना आसान है, अध्यवसान को दूर करना उतना आसान नहीं है। तो क्या करता है कि उस क्रिया में चढ़ जाता है, हम सब देख के करेंगे तो फिर क्रिया के पीछे लग जाता है, बारीक से बारीक क्रिया कर लेता है और अध्यवसान चालू रहता है, क्योंकि उसने पुरुषार्थ का खर्च वहां कर दिया। तो मुमुक्षु को चाहिए, विवेक करना चाहिए कि हमको हमारे मर्यादित समय शक्ति को कहाँ लगाना है, बाहरी क्रिया में, त्याग में लगाना है या मिथ्यात्व अज्ञान और अभिप्राय बदलने में लगाना है, क्या करना है, उसका विवेक करना चाहिए। हाँ, तो उसमें तो दोष होता ही है, उसका दोष हमको नहीं करना है। रिक्शा और गाड़ी में और बस में बैठने का और अध्यवसान का दोष की चिंता है क्या, नहीं है? पहले तो वो चिंता करो, वो चिंता करते हैं तो ये चिंता करो पहले तो। हाँ, यही बात चल रहा है समय सार में, वही बात चल रहा है कि तुम बाह्य वस्तु पर वजन नहीं रखो, अध्यवसान पर ध्यान दो। ये तो दृष्टांत दिया है। ऐसे निश्चय से बाह्य वस्तु को बंध का कारण अपना निर्बाध से सिद्ध नहीं होता। निर्बाध बात नहीं है, बाह्य वस्तु बंध का कारण है ही, उसमें बाधा भी आती है। जैसे मुनिराज को हिंसा का बंध हुआ नहीं वैसा। इसलिए बाह्य वस्तु के जो जीव को अतद्भाव रूप है, यह बंध का कारण नहीं है। और एक बात न्याय ले लिया कि बाह्य वस्तु को जो जीव को अतद्भाव रूप है, जीव के भाव और बाह्य वस्तु को कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे में अतद्भाव है। तद्भाव मैंने उस रूप होना, अतद्भाव मैंने उस रूप नहीं होना, यह बंध का कारण नहीं है। अध्यवसान के जो जीव को तद्भाव रूप है, यही बंध का कारण है। उसमें तन्मय होता है, तद्भाव होते ही अध्यवसान में जीव तन्मय होता है, तो उसमें बंध हो ही गया। तद्भाव होने में बंद, तन्मय होने में बंधा ही गया, वो खुद ही बंध में आ गया, प्रतिबद्ध हो गया। बाह्य वस्तु तो वस्तु अलग ही पड़ी है, बस तद्भाव स्वयं ही बंध रूप है। अच्छा, अमृतचंद्र आचार्य ने भी बहुत विस्तार से बात लिया है। निमित्त उपादान ने व्यवस्था समझाए, તો કઈ ગોટાળો થાય એવું નથી. બરાબર. ભાવાર્થ, ભાવાર્થ મેં અભી સરળ ભાષામાં કહેતે હૈ, જો અમૃતચંદ્રાચાર્યને સમજાયા તો શાસ્ત્રીય પરિભાષા મેં લિખા હૈ. અબ સરળ પરિભાષા મેં, ચલતી પરિભાષા મેં જયચંદજી પંડિત કહેતે હૈ કે બંધ કા કારણ નિશ્ચય સે અધ્યવસાન હી હૈ. બંધ કા કારણ તો અધ્યવસાન હી હૈ. और जो बाह्य वस्तुएं हैं यह अध्यवसान का आलंबन है, उसको अवलंबन करके अध्यवसान उत्पन्न होता है, उसको अवलंबन करके अध्यवसान उत्पन्न होता है, इसलिए उसको अध्यवसान का कारण कहने में आता है. वो उपचार से है, अध्यवसान होता है तो, नहीं होता है तो गंध के कारण नहीं है. जैसे हिंसा हुई मुनि के पैर के नीचे, तो गंध का कारण नहीं है. बाह्य वस्तु के बिना निराश्रयपने से अध्यवसान उत्पन्न होते नहीं है, इसलिए बाह्य वस्तु का त्याग कराने में आता है. क्यों? तो उसका आश्रय जीव लेता है तो उसको भी छुड़ाते हैं, और छुड़ाने के पीछे अभिप्राय अध्यवसान को छुड़ाने का है, बाह्य वस्तु को छुड़ाने का अभिप्राय नहीं है. जो बंध का कारण बाह्य वस्तु कहने में आए तो उसमें व्यभिचार आता है, व्यभिचार मैंने दोष आता है, क्योंकि कारण होने पर भी किसी स्थान में तो कार्य दिखता है और किसी स्थान में कार्य नहीं दिखता है, उसको दोष कहते हैं या व्यभिचार कहते हैं. और ऐसे कारण को व्यभिचारी कारणाभास कहते हैं, यानी अनेकांतिक कारणाभास कहते हैं. आभास हो गया कि जीव मर गया, मुनि को दोष होगा कि नहीं होगा?
नहीं होगा.
कोई मुनि इरिया समिति पूर्वक यत्न से गमन करते हो, उसके पैर के नीचे कोई उड़ता हुआ जीव वेग से आकर के पड़ करके मर गया, तो उसकी हिंसा मुनि को लगती नहीं है. मुनि को हिंसा का बंध नहीं होता, मुनि को हिंसा का बंध नहीं होता. यहाँ बाह्य दृष्टि से देखने में आए तो हिंसा तो हुई, बाह्य दृष्टि से देखो तो हिंसा तो हुई है, तो हिंसा का दोष किसको लगा? तो मुनि को तो नहीं लगा, उसका आयु पूरा होने वाला था, वो घटना घटी, उसमें मुनि निर्दोष है, मुनि को दोष नहीं लगाना चाहिए. हिंसा तो हुई परंतु मुनि को हिंसा का अध्यवसाय नहीं होने से उसको बंध होता नहीं है, हिंसा का बंध उसको नहीं होता है. तो दोष लिया हो तो प्रायश्चित, दोष नहीं किया हो तो बिना दोष कोई प्रायश्चित लेने की बात नहीं है. ऐसे कोई जीव मर जाए तो इसका प्रायश्चित नहीं लेने का है, परिणाम में जो दोष होता है उसका प्रायश्चित दिया जाता है या लिया जाता है, ऐसी बात है. वो तो जो उत्तर गुण है, मूल गुण के सिवा 84 लाख उत्तर गुण हैं, उसमें कुछ गुण होते हैं कुछ गुण नहीं होते, कुछ में दोष होता है कुछ में नहीं होता है, ऐसा होता है, उसके लिए वो प्रायश्चित है. मूल गुण की बात नहीं, मूल गुण तोड़ने का कानून ही नहीं है. मूल गुण टूटा मुनि बच गया, उसका मुनि पद गया, उसमें नहीं चलता. मूल गुण में कोई एडजस्टमेंट नहीं है. अभी अपने यहाँ हुआ था ना वो पंचकल्याणक अपने नंदीश्वर जी नाले का, तब ये लोग बहुत से दिगंबर लोग आते थे, तो उसमें वो भी अपना जो बावी तीर्थंकर के विषय में थोड़ा तकरार का विषय हो गया था, तो किसी ने कहा कि अपन तो व्यापारी लोग हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट करके समाधान कर लो ना, क्या थोड़ा एडजस्टमेंट करके समाधान कर लो। तो हमने पूछा, साहू श्रेयांश प्रसाद आए थे, उनको पूछा कि अपना दिगंबर श्वेतांबर का भी झगड़ा बहुत चलता है और दोनों जैन कुल के हैं, फिर अलग हो गई अलग बात है, लेकिन मूल तो जैन कुल के हैं वो लोग, तो जैनी जैनियों में तो तकरार नहीं होनी चाहिए, अब थोड़ा एडजस्टमेंट करना है, हम व्यापारी लोग हैं। वो श्वेतांबर साधु कहेंगे कि हम दो कपड़े रखते हैं और आप एक भी नहीं रखते हैं, तो ऐसा करें हम एक कपड़ा छोड़ देते हैं, आप एक कपड़ा ले लीजिए, हाँ झगड़ा खत्म, हम फिर झगड़ा करेंगे नहीं। तो एक कपड़ा पहनने से वो आधा श्वेतांबर हुआ या आधा दिगंबर रहा, क्या हुआ कि पूरा श्वेतांबर हो गया, एक कपड़ा पहनने से भी पूरा श्वेतांबर हो गया। तो ऐसे सिद्धांत में एडजस्टमेंट नहीं होते, सिद्धांत में एडजस्टमेंट नहीं होता, आपकी ताकत नहीं हो, शक्ति नहीं हो, मुनिपद नंगीकार नहीं करो, दीक्षा नहीं लो, अलग बात है, लेकिन मुनि तो ऐसे ही होने चाहिए। सिद्धांत में श्रद्धा ज्ञान में कोई मान छोड़ होती नहीं है, आचरण में अपनी शक्ति के अनुसार आचरण करो, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप क्यों मुनि नहीं होते हैं, दिगंबर धर्म अंगीकार किया तो मुनि क्यों नहीं होते, वो बात नहीं है, लेकिन मुनि का स्वीकार तो मुनि के स्वरूप पूर्वक ही होना चाहिए, उसमें कोई मूल गुण तोड़ने की बात। फिर वो बोले नहीं, मूल कोड में तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा बस वही हमारी बात है, हम लोग मूल सिद्धांत को मानने वाले हैं, इसलिए आपको लगता है कि हमारे मुनियों को क्यों नहीं मानते, लेकिन जो मुनि के योग्य नहीं है उसको माने कैसे, नहीं मानते, वो सही बात है। इसलिए हमारी विचारधारा, हमारी श्रद्धा, हमारी समझ आप लोगों से अलग पड़ती है, आप हमको समझो, आपको लगेगा कि वो ठीक ही हम कर रहे हैं, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा कि आप ठीक नहीं करते हैं। ये बात तो समझदारी के लिए बराबर सुनते रहे, कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, बराबर सुनते रहे। कहते हैं कि मुनि को अध्यवसाय नहीं होने से उनको बंध होता, हिंसा का बंध नहीं होता। जिस प्रकार यह पैर के नीचे मरने वाला जीव मुनि के बंध का कारण नहीं है, वैसे ही अन्य बाह्य वस्तुओं के बारे में भी समझ लेना कि तो वस्तु बंध का कारण नहीं है, बनाव घटना घटी वो बंध का कारण नहीं है। इस प्रकार से बाह्य वस्तु को बंध का कारण मानने में व्यभिचार माने दोष आता होने से बाह्य वस्तु तो बंध का कारण नहीं है, ऐसा सिद्धांत सिद्ध हुआ। पुनः बाह्य वस्तु बिना निराश्रय से अध्यवसान होता नहीं, इसलिए बाह्य वस्तु का प्रतिषेध भी है ही, उसका भी आग्रह रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कपड़े से कोई बंध नहीं होता तो मुनि कपड़ा रखे नहीं रखे ऐसा नहीं चलता, मुनि होता है उसको विकल्प आता, विकल्प नहीं है तो उसको पचकाना जाएगा कि मैं वस्त्र को ग्रहण करूंगा नहीं, उनका विकल्प खत्म हो गया, स्वरूप स्थिरता वितरकता आ गई, उतनी बात खत्म। क्रिया समिति बिना वो चलना ही नहीं चाहिए मुनि को, मूल गुण में है वो, हाँ इधर उधर चल के मुनि चले वो मुनि ही नहीं, उसकी स्वरूप स्थिरता रहेगी नहीं। अगर मुनि चार हाथ देख करके नीचे देख करके नहीं चलेगा और इधर उधर उसका उपयोग जाएगा तो ये दुनिया में गड़बड़ बहुत है, बहुत गड़बड़ है। परिणाम में वितरागता, मुनि योग्य वितरागता नहीं रहेगी, उनके तथ्य से नीचे चले जाएंगे, मूल गुण में कोई नहीं चले, तो ऐसा ही चलना पड़ता।
भगवान।